हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 26। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूच कहते हैं, अवतारा संख्या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिनः तुल्या सरसहस्य सहस्रश अवतारा यसंख्या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। अवतारा यसंख्या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसहस्युः सहस्रशः। अवतारा यसंख्या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। अवतारा यसंख्या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। शब्दों का अर्थ, अवतारा यसंख्या, अवतारा अर्थात अवतार ही मना निश्चय ही असंख्या, असंख्य यानी जिसकी काउंटिंग न की जा सके, बहुत बहुत अनलिमिटेड असंख्य। हरि सत्व निधिर्द्विजा, हरि मना हरि के यानी भगवान के, सत्व निधि यानी अच्छाई, सत्वगुण के सागर के यानी भगवान ऐसे हैं जो सत्वगुण के सागर हैं, द्विजा यानी ब्राह्मण, यथा विदासिनः कुल्या, यथा मन जिस प्रकार, विदासिनः अर्थात अक्षय यानी जिस प्रकार बहुत बहुत अनलिमिटेड, कुल्या यानी नाले, सरस अर्थात विशाल झीलों के यानी कि बहुत बड़ा समुद्र है तो उससे कितने सारे नाले निकल सकते हैं, उसी प्रकार तो भगवान के, क्योंकि भगवान इतने विभू हैं कि उनके इतने सारे अवतार हो सकते हैं। सरसस्यु सहस्रश, सी मना है सहस्र यानी हजारों। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य नाले। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर दी गई भगवान के अवतारों की सूची पूर्ण नहीं है, यह समस्त अवतारों की आंशिक झांकी है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, पृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगीश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए इतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी कि जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न योनियों की आवश्यकता अनुसार स्वयं जन्म लेते हैं। आप कलयुग में भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी अपरोक्ष रूप से कहा गया है कि यदि भी भगवान के अनेक अवतार हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन भगवान कभी कभी साक्षात रूप धारण करते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विशेषतः होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्ण अंश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराजा पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्ण अंश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 27। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरिरेव सप्रजापतयः स्मिता। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरिरेव सप्रजापतयः स्मिताः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरिरेव सप्रजापतयः स्मिता। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरिरेव सप्रजापतयः स्मिताः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरिरेव सप्रजापतयः स्मिताः। शब्दों का अर्थ देखिए। ऋषयः मनवो देवा, ऋषि अर्थात ऋषिगण, मनवा अर्थात जितने भी समस्त मुनिगण है, मनुगण है, जैसे मनु से सृष्टि हुई है ना वो सारे, और देवा यानी सारे देवता, ये तीन जो लिखे हुए हैं, ऋषि मनवो देवा, ऋषि यानी ऋषि जिनसे सृष्टि हुई है, मनो यानी मनोगण जिनसे सृष्टि हुई है, और देवा यानी देवता गण जिनसे सृष्टि हुई है, और मनुपुत्रा यानी मनु की सारी संतानें महाओजस अत्यंत ही शक्तिमान है, कला पुराणश, कला यानी पुराणश के अंश, और सर्वे यानी सामूहिक रूप से, सर्वे हरे रे एव यानी कि सामूहिक रूप से हरे माने भगवान का, एव यानी निश्चित ही, सब प्रजापतयः यानी प्रजापतियों सहित स्मृतः जाने जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं जिसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य, जो उपेक्षतया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्बरधारा बिम्बफलदरोष्ठा, पुण्ड्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवी, वेदे साङ्गपत् कमोपनिषदि गायन्ति सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतिना मनसा సుఖిను యస్యాంతన్న విదు సురాసురగణ దేవాయత మే నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భక్తేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకీ భక్తిరభవతి నైష్టికీ. పంచతత్వాత్మకం కేశ్వం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమోమి భక్తశక్తికం. వంచాకల్పతరూభ్యశ్చ కృపాసింధూభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీయద్వైత గదాధర శివాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మూకం కురుతు వాచాలం పంగు మంగయతే కిరాం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీగురు దీనతారణం. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కి జయ హో. पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 26 में, क्योंकि श्लोक नंबर 25 तक भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया जब सुप्त गोस्वामी ने, क्योंकि प्रथम अध्याय में ऋषियों ने सुप्त गोस्वामी से जो प्रश्न किए थे तो उनका पंचम प्रश्न था जो कि श्लोक नंबर 18 में कहा, अथाख्या ही हरि धीमन अवतार कथा शुभा लीलावदि विदतः स्वैरं ईश्वरस्यात्ममायया. अतः हे बुद्धिमान सूत, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए. परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं. तो उन्होंने ये जिज्ञासा उत्पन्न की थी क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्तियों से ये समस्त अवतार होते हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली कार्य करते हैं अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए. तो हम उन अवतारों की कथा के विषय में जानना चाहते हैं, हम भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में जानना चाहते हैं. और कहा अवतार कथा शुभा, क्योंकि ऐसी कथाएं सुनकर कल्याण होता है, क्योंकि जो उस समय होते हैं उनको जो वो अवतार के सानिध्य से जो सुख मिल रहा होता है, जो शुभ उनके साथ हो रहा होता है, जब कोई भगवान का अवतार होता है तो उस अवतार के टाइम पर जो जीव भगवान की लीला को साक्षात नेत्रों से देखते हैं और फिर जब भगवान की लीला समाप्त हो जाती है और फिर जब कोई उन अवतारों के विषय में केवल चर्चा करता है, केवल सुनता है, तो भी उनका भी उतना ही कल्याण होता है। तो कृपया हमें भगवान के उन विशेष अवतारों के विषय में बताइए। तब चैप्टर नंबर 3 में सूत गोस्वामी ने भगवान के अवतारों की कथा सुनाना प्रारंभ की और लगभग 22 अवतारों के विषय में बता दिया। और आज कह रहे हैं अवतारा या संख्या। अब ये जो भगवान के अवतार हैं, वो तो असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। उनके विषय में संपूर्ण भगवान के अवतारों के विषय में बता पाना असंभव है। हरि सत्व निधे, यानी कि भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण सत्व निधे हैं, सत्व गुण के सागर हैं। और जिस प्रकार सागर में से यथा विदा सिन्हा कुल्या, जिस तरह से सागर में से अनेक नदियां और नाले निकलते हैं, सहस्रशः, तो हम वो इतने अनगिनत होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि उनकी गणना जिस तरह में नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से भगवान के अवतारों की भी कंप्लीटली गणना नहीं की जा सकती है। उनके भगवान की विभूतियों के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में संपूर्ण ज्ञान कोई नहीं आपको दे सकता है, ना कोई श्रवण कर सकता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी अनंत है। परंतु क्योंकि भक्त अपने भगवान के विषय में श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होता है, इसलिए उनकी जिज्ञासा, ऋषियों की जिज्ञासा को देखते हुए सूत गोस्वामी ने भगवान के कुछ थोड़े से अवतारों के विषय में बताया। क्योंकि भगवान के अनंत अवतार है, उनके विषय में संपूर्ण बता पाना संभव नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन ने कहा था 10.18 में, भगवान से कहा, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिः श्रीवतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना अधिक आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही अधिक आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, पहले ही बता देता हूँ कि तुमने जो बोला है विस्तार से बताओ, विस्तरेणात्मनोयोग, तो विस्तार से नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, हंतते कथयिष्यामि देव्याम ह्यात विभूतयः प्राधान्यतः कृशेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। देखो, मैं तुमको विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, जो मुख्य है, प्राधान्यतः, जो ज्यादा प्रधान है, जो मुख्य है, प्रमुख है, वही विभूतियां बताऊंगा। क्यों? क्योंकि नास्त्यंतो, अंत नहीं है कोई भी मेरे दिव्य विभूतियों का, नास्त्यंतो विस्तरस्य में, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बता दूं और बोलूं हाँ भाई अब मैंने तुमको डिटेल से बता दिया, इसके अधिक और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी विभूतियां तो असंख्य हैं, मैं सारा का सारा तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा जो मुख्य है। उसी प्रकार आज सूत गोस्वामी को भी यह लगा कि कब तक बताता रहूंगा भगवान की इन अवतारों के विषय में, भगवान की अवतारों की कथा तो कभी समाप्त होगी ही नहीं। तो आज कह रहे हैं, तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैंने आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल संकेत मात्र में भगवान के थोड़े ही अवतारों का वर्णन किया है, समझो जस्ट टेलर दिखाया है। क्योंकि भगवान के अवतारों का कोई अंत नहीं है और समस्त अवतारों का वर्णन कर पाना संभव भी नहीं है। तो अभी श्लोक नंबर 25 तक भगवान के 22 अवतारों के विषय में बताया, जिसमें पुरुष अवतार, फिर शक्ति आवेश अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, और ऐसे बताते बताते स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार में ही गिना दिया। ऐसा क्यों किया? मतलब ऐसा वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी को तो पता था ना, जैसे बाद में अगर हम देखते हैं कि 28 में श्लोक नंबर, आज हम कल पढ़ेंगे 28, उसमें कहेंगे कि ये सब तो अवतार मैंने आपको बताया ना, इसके बीच में जो मैंने कृष्ण के विषय में बताया था वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। लेकिन कोई ऐसे कह सकता है तो फिर, क्योंकि ये उनसे मिस्टेक हो गई थी, सूत्र गोस्वामी से मिस्टेक हो गई थी कि उन्होंने पहले ही बता दिया कृष्ण को भी अवतारों, कृष्ण की भी अवतारों में ही गिरणा कर दी थी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना, यानी भगवान भी अपने गोलोक वृंदावन धाम से नीचे उतरते हैं ना, तो उसको उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर है ना, इसको भगवान को अवतार कहना गलत नहीं है। लेकिन ये भगवान के अवतार है ऐसा नहीं, वो भगवान के, वो जो है उस भगवान के अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है, तो उसको आगे क्लियर करेंगे। और सुखदेव गोस्वामी ने जब ना भागवतम बताया था, जैसे वेदव्यास जी को नारद मुनि ने कहा तुम समाधि ले लो, आगे हम पढ़ेंगे, और समाधि की भाषा में जो तुम्हें भगवान के विषय में समझ में आता है, जैसे जो जो तुम्हें प्रेरणा मिलती है उसके विषय में आप लिखो, तो उस अवस्था में भी उन्होंने यही लिखा, पहले अवतारों में भगवान को गिना दिया, ताकि जब बाद में इस बात को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि कोई कोई लोग अभी यही समझते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जब ऐसे बीच में अवतारों में भगवान को गिना दिया और आगे जाके जब उसको क्लियर किया जाता है, तो फिर लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है कि हाँ, भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात अवतारी है, वो भगवान के अवतार नहीं है। ऐसे तो भगवान के असंख्य अवतार है। तो इस तरह से बताते कि जिस तरह से जलाशय से अनेक नदियां निकलती हैं, भगवान से असंख्य अवतार निकलते हैं, और कहीं कहीं संकेत मात्र में शास्त्रों में हर अवतार के विषय में लिखा होता है, जो कि जब हम गुरु और साधु वैष्णव जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुखारविंद से जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें उनके विषय में शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझ में आता है। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख विभिन्न अवतारों के रूप में अलग अलग शास्त्रों में लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी बताया गया है, और स्वयं भागवतम महापुराण 11.5.35 में कहा, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सा गोपंगस्तपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा, कि कलयुग में जो बहुत बहुत बुद्धिमान होंगे सुमेधसा, यहाँ पर ये बात समझने की बात है कि जो संकीर्तन यज्ञ है वो केवल सुमेधसा लोग ही कर सकते हैं। मेधसा माना बुद्धि, जिसके पास बहुत अच्छी बुद्धि हो ना, वही भगवान के इस संकीर्तन आंदोलन के मुख्य प्रधान, जो भगवान ने अवतार लिया था चैतन्य महाप्रभु का, उसको समझ सकते हैं। केवल बुद्धिमान लोग ही ऐसा कर सकते हैं, यानी कि बुद्धू लोग भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं कर सकते। वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाएंगे, पूजा की अलग अलग विधियां बताएंगे, करोड़ करोड़ साल तक तपस्या करने के लिए बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर वो निराकार की उपासना करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, परंतु भगवान के साकार रूप को, भगवान के पवित्र नाम के इस महामंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। तो शास्त्र कहता है कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम, वो स्वयं कृष्ण का वर्णन करेंगे परंतु वो दिखने में और कृष्ण यानी गौर कांति वर्ण के होंगे और यज्ञ संकीर्तन प्राय सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का यज्ञ करते रहेंगे और सबको भगवान के पवित्र नाम की महिमा के विषय में और संकीर्तन आंदोलन में सहायक होते हुए सबको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र के द्वारा पतित आत्माओं का उद्धार करेंगे और जो सुमेधस होंगे वो उनका अनुगमन करेंगे। जिस तरह अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं, जैसे हम पढ़ते पहले पढ़ा कि कारण दक्षाय विष्णु की जब वो सांस लेते हैं तो उसकी सांस से अनेकों अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और हर ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य अवतार होते रहते हैं, उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रतापों से निरंतर जल बहता रहता है, यानी जिस तरह समुद्र की लहरों को नहीं गिना जा सकता उस तरह भगवान के अवतारों की भी गणना नहीं की जा सकती, वो असंख्य हैं। और आगे श्लोक नंबर 27 में बताया ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस। ऋषि अर्थात जैसे भगवान के पहले प्रथम अवतार के विषय में संत कुमार उनके ऋषि और नारद ऋषि इत्यादि इन ऋषियों के विषय में और फिर मानव यानी जितने मनु थे समस्त मनु उनको और देवा यानी सारे देवता मनुपुत्रा और जो मनु की जितनी भी संतानें हैं माहो जैसा यानी वो बहुत अत्यंत शक्तिशाली। अब उसमें क्या होता है कला सर्वे हरे रेव सप्रजापतयः स्मृता, यानी कि उसमें क्या होता है भले ही वो दिखने में कितने ही ज्यादा शक्तिशाली दिखे और जो जितने भी प्रजापति हैं सप्रजापतयः स्मृता जितने भी है वे सब क्या है कला सर्वे हरे रेव वो सब के सब केवल भगवान की कला और भगवान के अंश ही है, यानी कि वो वास्तव में उनका अस्तित्व केवल इतना है, यानी किसी चीज का अस्तित्व है तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वो क्योंकि कृष्ण अपने एक अंश से उसमें प्रवेश करते हैं। कृष्ण का एक अंश कृष्ण के वो एक अंश होते हैं तभी उसके अंदर इतनी शक्ति होती है इतना सामर्थ्य होता है केवल कृष्ण ये जैसे महो जैसा यानी अत्यंत शक्तिशाली है भले प्रजापति हैं भले संसार की रचना करते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है कला सर्वे हरे रेव वो सब भगवान श्री कृष्ण की एक कला है। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 6 में बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। भगवान यही शब्दों का उच्चारण कहते हैं जैसे आज हम पढ़े ना उसी प्रकार से भगवान कहते हैं महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता लोक इना प्रजा महर्षयः सप्त पूर्वे यानी कि सबसे पहले सात महर्षि हैं सप्त ऋषिगण जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि वो नाव में सप्त ऋषिगण को बिठा के जाते हैं जब मत्स्य अवतार होता है तब चाक्षुष मनु के अंत में महाराज सत्यव्रत को ये आदेश दिया कि समस्त सप्त ऋषिगण भी नाव में बैठेंगे और जितने भी बीज हैं जितने भी जीवों की जितने भी बीज हैं और नस्लें हैं जितनी वो सब उस नाव में बिठाएंगे तो उन सप्त ऋषियों के विषय में बता रहे हैं महर्षयः सप्त पूर्वे यानी सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पहले क्या थे चार कुमार चत्वारो मनवस्थता चार अन्य महर्षि एवं सारे मनो कौन से जितने भी मनो गुजर चुके हैं मानव जाति के जितने भी पूर्वजन हैं वे सब क्या हैं मद्भावा मानसा जाता सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और येषां लोक इमह प्रजा विभिन्न लोक में जितने भी निवास करने वाले हैं सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, यानी कि यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी संसार में है वो सब मेरा ही अंश है या उनका अंश है। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कम शक्तिशाली वाले होते हैं, जैसे सब कुछ भगवान की ही है, यहाँ पर जो भी विभूति दिख रही है वो सब भगवान की है, और जो कम शक्तिशाली वाली विभूति दिख रही है वो विभूति कहलाती है, और जो अधिक शक्तिशाली है वे आविशक्ति आविश अवतार कहलाते हैं। तो हम विभूतियों के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 10 में बताया है, बहुत सारी विभूतियां भगवान की, जिसमें थोड़ा सा भी सौंदर्य भगवान बताते हैं बहुत ही सुंदर रीति से 10.41 में, यद्यत् विभूति मत् सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्त्वम् मम तेजो अंश संभवम्। तुम जान लो कि सारी ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत होती है, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर सुंदर दिख रहा है, जो कुछ अच्छा जो अट्रैक्टिव दिख रहा है, कोई भी नेचुरल कुछ अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज किसी भी तरह से, यदि वो ज्ञानी है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, तो थोड़ी सी जिसमें शक्ति है, ये सारा सौंदर्य यानी कि जो षडेश्वरी है, जो जीव को अट्रैक्ट करता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गण, उन समस्त षडेश्वरी की आगार जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में अपना उस तेजस्वी शक्ति का एक सफुलिंग मात्र दे दिया है, या इस संसार में जो कुछ भी देखने लायक है, जो कुछ भी प्रशंसा करने लायक है, जो कुछ भी अट्रैक्टिव है, वो सब भगवान कहते हैं जान लो कि वो सब क्या है, मम तेजो अंश संभवा, वो सब मेरे दिव्य तेज का एक छोटा सा विभाग है। जैसे अगर भगवान को हम एक बहुत बड़ा तेज पुंज मान ले तो वो छोटी सी चिंगारी है, भले वो इस संसार का बहुत बड़ा विभूति हो, देखने में हमें ऐसा लगे कि इससे बड़ा महान और क्या होगा, लेकिन भगवान कहते हैं मम तेजो अंश संभव, और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे कोई भी नहीं जान सकता, मेरी शक्तियां, मेरी विभूतियां, मेरा अस्तित्व इतना महान है कि कोई भी नहीं जान सकता। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से 10.2 में कहते हैं, नमे विदुषिरगणाः प्रभवं नमहर्षयः अहमादे हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण अत्यंत उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जान सकते हैं और ना ही महर्षिगण ही जान सकते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। साफ साफ भगवान ने कह दिया कि नामे विदु सुरगणाणाम, और ना ही सुरगण यानी देवता जान सकते हैं और ना ही महर्षि जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान का अस्तित्व, क्यों भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवाना, मेरा अस्तित्व पहले से है और मेरा अस्तित्व इतना महान है कि कोई भी नहीं जान सकता, देवता तथा महर्षि गण भी भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, देवता भी नहीं समझ सकते हैं, महर्षि भी नहीं समझ सकते, तो इस शुद्ध लोक की शुद्ध जो हम जीव है वो भला भगवान को क्या समझ सकते हैं। इसे भगवान में जब बताने पर आते हैं तो बताने के बाद कहते हैं कि देखो अर्जुन, नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परन्तप, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वह तो मेरी अत्यंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान कहते हैं देखो अंत ही नहीं है, मैं खुद बताने पर आया हूँ तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बताना तो संभव ही नहीं है, तो फिर अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो सब क्या है, सिर्फ एक छोटा सा अंश है, वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, सिर्फ एक छोटा सा टेलर दिखाया है। उसी तरह से आज अनासूत गोस्वामी ऋषियों को कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान की जो अवतार हैं, भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान के जो शक्तियाविश अवतार हैं, उनके विषय में संपूर्ण ज्ञान देना संभव नहीं है, तो जो अभी तक बताया वो तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। भगवान ही समस्त सृष्टि के सृष्टा है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं समस्त जीवों, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक लोक हो, सबका मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही पालने वाला हूँ। ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, जिन्हें भगवान और ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। और आज सुत गोस्वामी ने श्लोक नंबर 27 में बता दिया, ऋषयः मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरिरेव स प्रजापतयः स्मृता। यानी कि जितने भी ऋषिगण हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 7 महर्षि हैं, और उनसे पहले क्या है, 4 दूसरे ऋषि हैं, संत सनातन, सनंदन तथा संत कुमार, सारे मनु जितने भी हैं वो सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं। और इस तरह से जो इस ब्रह्मांड के कार्यकलाप चल रहे हैं वो सब भगवान की एक अंश की कार्य, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि ये सारा कार्यक्रम भगवान के अंशों के जरिए ही हो रहा होता है। जितने भी ये ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांडों की ये व्यवस्था है, वो सब भगवान के अंश और उनके अंश करते रहते हैं। भगवान के अंश अवतार लेते हैं और फिर इस तरह से भगवान की सारी व्यवस्था चलाते हैं। जैसे बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होता है, वो हर एक गाँव में हर एक जगह पर जाके देखता नहीं है कि वहां पर क्या होता है। बहुत बड़ा जो होता है ना, वो तो कभी जाता है, लेकिन ज्यादातर उसके सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जितने सारे उनके कार्य करने वाले जितने भी होते हैं, वो सारे काम को देख रहे होते हैं। उस तरह से भगवान श्री कृष्ण से संकर्षण यानी बलदेव का अवतार होता है, वासुदेव से संकर्षण, और भगवान संकर्षण को जानते हैं। भगवान बाकी जो संकर्षण है यानी वासुदेव के बाद जो संकर्षण यानी बलदेव या नित्यानंद प्रभु या बलराम जी का जो अवतार होता है, वो सबको देख रहे होते हैं और उनके बाद से वो सारा कार्य देख रहे होते हैं ब्रह्म उन्हीं से, क्योंकि आगे जाके महासंकर्षण से कारण दक्षाय विष्णु, फिर क्षीरो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो महासंकर्षण की ये ड्यूटी है कि सारे कार्यकलापों को देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं सारे कार्यों को। फिर बहुत 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 टाइम के बाद भगवान को ऐसा लगता है कि एक चक्कर लगा दिया जाए संसार में, तो फिर भगवान जो है वो आते हैं संसार में अपने साक्षात स्वरूप में। और आगे बताएंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो भगवान है, साक्षात कृष्ण वो भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप भी कोई अवतार नहीं है, वो भी भगवान साक्षात है। और वो भगवान के उन रसों का आस्वादन करने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान इस संसार में आकर भी जब भगवान स्वयं भी अवतार लिए तो भी उस रस का आस्वादन नहीं कर पाए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार और कृष्ण का अवतार ये बिल्कुल विभिन्न है। बाकी सब ये सारी चीजों में भगवान को इतना ज्यादा आनंद नहीं आता, भगवान को केवल अपने भक्तों की भक्ति, यानी कि भगवान सिर्फ संसार की व्यवस्था को देखने के लिए भगवान इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो तो ये विष्णु से जो अवतार हो रहे होते हैं और शंकरशन जिनको प्रेरणा दे रहे होते हैं, ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं, सारे देवता, इवन सारे देवता भी जब उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो कृष्ण को जाके गौलोक वृंदावन धाम में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। वो भी विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु तक ही जाते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु में से अवतार प्रकट हो जाते हैं। भगवान को इसके लिए ना डिस्टर्ब करने की, क्योंकि भगवान की नित्य आनंदमय लीला चलती रहती है और ये लीला इतनी आनंदमय होती है कि भगवान जो है वो संसार के ये जो कष्ट वष्ट है वो सब भगवान के अंश और कला ही सब देख रहे होते हैं। परंतु जब किसी भक्त के मुख से महामंत्र की ध्वनि निकलती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र कहता है यह मंत्र नहीं है, यह जो भगवान का नाम है ये पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अविनतो नाम नामिनो, ये पूर्ण शुद्ध है। संसार भौतिक संसार की गंध का लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं है। भगवान का पवित्र नाम इतना शुद्ध है, अभिनत्वान नाम नामिनो, नाम और स्वयं नामी में कोई अंतर नहीं है। तभी ऐसा लगता है कि फिर ये जो कोई महामंत्र का जब कोई जप करता है तो फिर कहते हैं कृष्ण मंत्र, सॉरी कृष्ण नाम महामंत्र ऐ तव स्वभाव जयी जपे तार कृष्ण उपजेय भाव, कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो क्योंकि गौलोक वृंदावन धाम बहुत ऊपर है, जैसे ये भौतिक जगत समाप्त होता है फिर विरजा नदी आती है, विरजा नदी के बाद असंख्य वैकुंठ लोक है, वो सबको के ऊपर ऊपर होते 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 बहुत ही दूर भगवान का गौलोक वृंदावन धाम है। तो जब महामंत्र की ध्वनि किसी के हृदय से निकलती है तो सारे आसमानों को चीर कर गौलोक वृंदावन धाम तक जाती है। तो भगवान भी जब कोई जीव भगवान के पवित्र नाम का जप करता है ना तो भगवान विचलित होते हैं कि मैं कैसे उसको प्रसन्न करूं, कैसे मैं उसको आनंदित करूं जो मेरे इतने पवित्र नाम का जप कर रहा होता है। तो केवल भगवान जो है वो भगवान केवल अपने नाम से प्रसन्न होते हैं। जब भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान की कथाओं का श्रवण किया जा रहा होता है तो केवल ये दो चीजें जो है वो हमारी भक्ति लता को बहुत ही ऊपर लेकर जाती हैं। और वो भक्ति लता ऊपर होते 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 एक दिन भगवान के चरणों के पास जाकर पहुंच जाती है। तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि हम रोज भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, क्यों हमें ऐसा आस्वादन नहीं होता, क्यों हमारे हृदय में वो पवित्र भाव नहीं उपस्थित। देखो भक्तों, जितना हम महामंत्र को समझते हैं जितना ज्यादा हम महामंत्र को कृष्ण यानी कि हम मंत्र को मंत्र समझ के जपते हैं, कृष्ण की तरह आदर नहीं देते, जितना भगवान के अंदर पावर है नाम के अंदर उतना ही सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता, भगवान ने अपनी समस्त शक्ति इस नाम को दे दी है। तो जितनी श्रद्धा हम उस नाम के प्रति विकसित करेंगे, हमारे पास सबसे कीमती कोई चीज है तो वो हमारी श्रद्धा की पूंजी है। यह श्रद्धा उस मंत्र को भगवान बना देती है। कोई बोले अगर कि क्या महामंत्र का जप करने से हमें भगवान के दर्शन होंगे, तो उसका साफ साफ उत्तर ये है कि नहीं। महामंत्र और भगवान दो नहीं है। जैसे अगर कोई यज्ञ करता है तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तपस्या करता है तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ध्यान लगाता है तो भगवान के, क्योंकि यज्ञ अलग चीज है और भगवान एक अलग चीज है, तपस्या एक अलग चीज है, भगवान एक अलग चीज है, ध्यान एक अलग चीज है, भगवान एक। लेकिन जब कोई जप करता है ना तो जप के अंदर स्वयं ही जब आपका भाव आएगा कि जप साक्षात भगवान है, तब कहीं जाकर आपको भगवान नजर आएंगे, उसके अंदर ही होंगे, दिखेंगे तब तक नहीं जब तक कि हमारे अंदर यह विश्वास नहीं हो जाता है कि नाम साक्षात भगवान है, अभिन्नत्वान नाम नामिनो। तो भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई आकर्षित कर सकता है तो भगवान का नाम है, बाकी सब जो कुछ भी है वो सब भगवान के अंश और कलाएं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 10.42 में कहते हैं अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवाशुना विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। ये जो कुछ भी संसार में हमें दिख रहा है वो केवल भगवान का एक छोटा सा अंश है, और भगवान परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तु में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। तो हमें इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उन्हें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चुंटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।